हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अगली सुबह सुनैना को पता ही नहीं चला कि इतना सब होने के बाद जब वो इतनी परेशान थी और रो भी रही थी तो कब रोते रोते उसकी आंख लग गई और वो उसी तरह जमीन पर बैठे बैठे सो गई। लेकिन जब रात में वो वहां बैठी थी तब आदित्य भी वहां जमीन पर ही बेहोश पड़ा हुआ था। अब जब उसकी आंख खुली तो वो कमरे में अकेली थी। कमरे की सजावट और सारा सामान जस का तस रखा हुआ था और कमरे का दरवाज़ा भी उसी तरह आधा खुला हुआ था जैसे रात में। सुनैना समझ गई कि आदित्य कमरे से बाहर जा चुका है। ये सोचकर उसने मन ही मन राहत की सांस ली, क्योंकि रात को जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो आदित्य का सामना नहीं करना चाहती थी। अब उसे समझ में आया कि आदित्य उसे बचाना चाह रहा था और उसने बेवजह उसे इतना गलत समझा था। लेकिन साथ ही सुनैना को आदित्य से काफ़ी चिढ़ थी, उसकी शराब पीने की आदत की वजह से। उसने शराब की वजह से अपने घर में होने वाली लड़ाइयाँ भी देखी थी अपने माँ बाप के बीच, और अब वही सब अपनी ज़िंदगी में होते हुए वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसलिए वो आदित्य से फ़िलहाल दूरी रखने में ही विश्वास कर रही थी, खासकर तब जब वो नशे में हो। अपने लिए इस तरह के जीवन साथी और इस तरह के जीवन की कल्पना तो सुनैना ने सपने में भी नहीं की थी। लेकिन अब जो हो चुका था उसे कोई नहीं बदल सकता था, इसलिए वो अपनी जगह से उठी और सामने लगे बड़े से आदमकद शीशे में खुद को देखने लगी। सारी रात जमीन पर बैठे रहने की वजह से उसके होंठ सूख गए थे और सारा चेहरा सर्दी की वजह से सफ़ेद पड़ चुका था। इतना रोने की वजह से आंखों में लगा काजल भी फैल चुका था और उसकी काली लाइन उसके पूरे चेहरे पर बनी हुई थी। साथ ही लिपस्टिक और बाकी मेकअप भी काफ़ी हद तक खराब हो चुका था। सुनैना अपनी खुद की इस तरह की हालत कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी, लेकिन इस वक्त वो सच में इस हाल में ही थी। क्या है ये सब? ये मैं नहीं हूँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं हूँ। सामने लगे शीशे में अपना ऐसा हुलिया देखकर उसने अपने हाथों से अपने पूरे चेहरे को रगड़ रगड़ कर साफ करना शुरू कर दिया और साथ ही पहनी हुई सारी ज्वेलरी और हाथों की चूड़ियां उतार उतार कर वहीं जमीन और बिस्तर पर फेंकने लगी। क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ ही? क्यों? आखिर क्या कसूर है मेरा? रोते रोते वो खुद से ही सवाल कर रही थी। तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़े अपने दुपट्टे के जले हुए टुकड़े और थोड़ा बहुत जल चुके कारपेट पर पड़ी तो उसे रात का सब कुछ याद आ गया। उसने वो सारा कुछ पहले अपने हाथ से समेटा और फिर उठाकर बाथरूम में रखे डस्टबिन में ले जाकर डाल दिया। फिर चेंज करने के लिए कपड़े ढूंढने लगी। उसे वहां कोई कपड़े नहीं मिले तो उसने अलमारी में रखा हुआ शायद आदित्य का ही लोअर टी शर्ट पहन लिया, क्योंकि वो लहंगा उसे बहुत भारी बल्कि किसी बोझ की तरह लग रहा था। वो सब कपड़े आदित्य के थे तो जाहिर सी बात है सुनैना के लिए काफ़ी ज़्यादा ओवरसाइज्ड थे, लेकिन सुनैना उस लहंगे में अब किसी भी कीमत पर नहीं रहना चाहती थी। इसलिए उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और फिर सारा सामान समेटकर उसी अलमारी में रख दिया। अब सुनैना को समझ नहीं आ रहा था कि वो इसी तरह से बाहर कैसे जाए, लेकिन फिर उसने सोचा कि वो पहले गीता को यहाँ बुला लेती है और उससे पूछ लेगी नीचे कौन कौन है, फिर ही वो यहाँ से बाहर निकलेगी। गीता, गीता दी? अपने कमरे के दरवाजे के पास आकर सुनैना ने गीता को आवाज़ लगाई। कुछ ही देर बाद उसे गीता सीढ़ियाँ चढ़ती हुई नजर आई तो सुनैना चुप हो गई और वापस कमरे के अंदर चली आई। गीता आकर कमरे के दरवाजे पर खड़ी हो गई और सुनैना की तरफ देखते हुए बोली, आपने बुलाया मैडम, कोई काम था? ये बोलते हुए जैसे ही गीता की नज़र सुनैना पर पड़ी उसकी हंसी छूट गई और वो हंसते हुए बोली, भाभी ये तो भैया के कपड़े, ये क्या पहन रखा है आपने? बहुत ज़्यादा फनी लग रही हूँ क्या मैं इनमें? वैसे कुछ और था भी तो नहीं पहनने? गीता को इस तरह खुद पर हंसता देख सुनैना भी खुद को देखने शीशे की तरफ मुड़ी। जैसे ही उसने शीशे में खुद को देखा वो सच में बहुत ज़्यादा अजीब दिख रही थी। आदित्य की टी शर्ट की आस्तीन उसके हाथ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लंबी थी और टी शर्ट भी उसे बहुत ज़्यादा लूज था। खुद को इस हालत में देख उसकी भी हंसी छूट गई और वो भी हंसने लगी, लेकिन फिर उसी तरह हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गए जैसे ही उसे अपनी करंट सिचुएशन याद आई। अरे आप रोने क्यों लगी? मैंने आप पर हंसा इसलिए क्या? सॉरी सॉरी मैडम, गीता सुनैना के आंखों में आंसू देखकर उसके तरफ बढ़ती हुई बोली। नहीं आप सॉरी क्यों बोल रही हैं गीता दी, यहाँ तो जिंदगी ने ही मेरे साथ इतना बड़ा मजाक किया है। गीता के इस तरह माफी मांगने पर सुनैना मन में काफी कुछ सोचते हुए एकदम से बोल गई। गीता को सुनैना से इस तरह की बातों की उम्मीद नहीं थी तो उसने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, क्या हुआ मैडम, भैया से झगड़ा हुआ है क्या आपका, इस तरह क्यों बोल रही हैं? नहीं कुछ नहीं, बस कोई और कपड़े नहीं थे पहनने को तो अलमारी में मुझे यही मिला। सुनैना ने बात बदलते हुए और अपने आंसू छिपाते हुए चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए गीता से कहा, तो इतनी सी बात के लिए रो क्यों रही हैं आप, नीचे काफी सारा सामान है, मैं लाती हूँ, उसमें जरूर कुछ न कुछ होगा आपके पहनने के लिए। गीता ने सुनैना से बताया तो सुनैना थोड़ा सा चौंक गई। उसे नहीं पता था कि गीता किस सामान की बात कर रही है, क्योंकि जहाँ तक उसे याद था वो तो अपने मायके से कुछ भी सामान लेकर नहीं आई थी यहाँ पर, क्योंकि वो इतनी ज्यादा गुस्से में थी और अपने परिवार वालों से जब उसने सारे रिश्ते ही तोड़ दिए थे तो उनके घर से कोई भी सामान लेकर कैसे आती, भला ये आखिर सुनैना के आत्मसम्मान की बात थी। कौन सा सामान, किस सामान की बात कर रही हो तुम, सुनैना ने गीता से पूछा। अरे वो नीचे हॉल में है काफी सारा सामान, आपको नहीं पता क्या, आप यहीं रुकिए मैं लेकर आती हूँ। सुनैना के सवाल का जवाब देते हुए गीता कमरे से बाहर चली गई, शायद वो सारा सामान लेने के लिए। क्रमशः